मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, भोपाल में एक बड़ी खूबसूरत और मनोरम जगह है जिसे केरवा डैम कहते हैं, और सच पूछिए तो यह स्थान मेरी पत्नी प्रीति और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और ख़ासकर तब जब बादल छाए हुए हों और रिम झिम बारिश हो रही हो और बीच बीच में बारिश रुक भी जा रही हो और फिर से रिम झिम बारिश होने लगे। अगर ऐसे समय पर केरवा डैम जाया जाए तो आप ऐसा महसूस करेंगे मानो कि यहाँ का पूरा वातावरण है वो कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा में तब्दील हो चुका है। कम से कम हम लोग तो ऐसा ही अनुभव करते हैं। जैसा नाम है, केरवा नाम का वहां डैम है, बांध है, और बांध के बिल्कुल किनारे एमपी टूरिज्म का एक खूबसूरत छोटा प्यारा सा रेस्टोरेंट है, और फिर एमपी टूरिज्म ने वहां घूमने के लिए थोड़े बहुत उस तरह से बागवानी जैसी व्यवस्था कर रखी है। कुछ शेड बनवा रखे हैं छाते नुमा, वहां जाकर के आप बैठ सकते हैं, खासकर डैम की तरफ मुंह करके, और विशाल पानी का जो वहां आपको भंडार दिखाई देगा आप उसे अपने अंदर समा सकते हैं, और जहां पानी खत्म होता है वहां पर आपको फिर पहाड़ियां दिखाई देंगी। बहुत ही अद्भुत मनोरम दृश्य। हम लोग कल वहां गए कुछ अपने मित्र के साथ, मित्र का परिवार था और हम लोग वहां गए। बहुत ही खूबसूरत सुनहरा मौसम था और हम लोगों ने आनंद लिया, और हम लोग जब बैठे रेस्टोरेंट में तो जब पहुंचे थे तभी से ये बात थी कि खूब तेज हवा चल रही थी, जबकि जब हम लोग घर में थे तब तेज हवा नहीं थी, और हमारे घर से ये जो केरवा डैम है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हमारे घर पर इतनी तेज हवा नहीं थी, हल्की हल्की मंद मंद अच्छी हवा चल रही थी लेकिन तेज नहीं, लेकिन वहां तो ऐसा लग रहा था कि यदि आप खड़े हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको झटके से लगने लगे, बाल तो आपके सही सलामत रह ही नहीं सकते। तो दोस्तों, जब बातचीत होने लगी तो मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि यहां कैसे इतनी तेज हवा चल रही है, यहां तो बहुत तेज हवा चल रही है, अब वहां तो नहीं थी इतनी तेज हवा, कहां से आ गई ये हवा, ऐसी बातचीत के दौर में उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि नहीं, यहां केवल हवा ही तेज नहीं चल रही है बल्कि यहां की रोशनी को भी आप देखने की कोशिश कीजिए, रोशनी भी यहां कुछ ज्यादा ही है। तो उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर देखा और फिर कहा कि हां हां सच बात है कि यहां रोशनी भी कुछ ज्यादा ही है। तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि यहां हवा तेज चल रही है, यहां रोशनी ज्यादा है? तो वो थोड़ा सा सोचने लगे लेकिन फिर मुंडी हिला करके उन्होंने कुछ इस तरह का संकेत दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं बता पा रहा हूं, या जो भी कह लीजिए, अनमने भाव से ही सही, या हो सकता है कि इस प्रश्न पर उन्होंने गौर ही नहीं किया हो, इस लायक नहीं समझा हो इस प्रश्न को कि इसके बारे में सोचा जाए। लेकिन मेरे लिए तो इस तरह के प्रश्न बहुत मायने रखते हैं क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और मैं ये मान करके चलता हूं कि हम प्रकृति के हिस्से हैं, इसीलिए प्रकृति से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से ही जुड़े हुए प्रश्न होते हैं और हमें उनके उत्तर ढूंढना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्त से कहा कि आप सामने देखिए, पूरा का पूरा विशाल जलराशि है, बीच में कहीं कोई बाधा नहीं है, किसी भी तरह की बाधा नहीं, आपको कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कोई आइलैंड दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि कोई रिहायशी एरिया नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है, बिल्कुल निर्बाध, यानी कि यहां हवा और रोशनी को रोक सके ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं है। मतलब जो कुछ भी यहां प्रवाहित हो रही है वो बाधा रहित, बिल्कुल बाधा रहित प्रवाहित हो रही है, यहां के सारे प्रवाह बाधा रहित है। चूंकि बाधाएं नहीं है इसलिए हवा भी तेज है और रोशनी भी तेज है, क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। बात खत्म हो गई और दूसरी बातें होने लगी। क्या मैं भी अपनी बात यहां खत्म कर दूं? तो शायद आपको लगेगा यार बात कुछ अधूरी सी रह गई, लेकिन अगर आप कुछ दिनों से मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते आ रहे हैं तो डेफिनेटली मेरी अभी की बात आपको अधूरी नहीं लगेगी, बल्कि यह लगेगा कि सच बात है कि अभी तक जो कहा जा रहा था उसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं संपूर्णता प्राप्त हो रही है, वो संपूर्णता की ओर, कंप्लीट होने की ओर बढ़ रही है। क्या ऐसा नहीं है दोस्तों? हमारे जो विजन है, हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो विचार हैं, ये भी बाधा रहित प्रवाह की मांग करते हैं, लेकिन हमने न जाने इनके रास्ते में कौन कौन सी और कितनी सारी बाधाएं खड़ी कर दी हैं, कितनी सारी बाधाएं, कहीं परंपरा की बाधाएं तो कहीं धर्म की बाधाएं, तो पता नहीं कितनी तरह की बाधाएं, गिनाने से कोई फायदा नहीं। तो यदि हमारी चेतना को इतनी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, या जो नई रोशनी और नई हवा जो आने वाली है उनको हमने रोक रखा होगा, दीवारें बना रखी होंगी, तो कैसे अंदर हमारे प्रवेश कर पाएंगे? फिर हमें नई रोशनी और नए तरह के वायु, सुगंधित वायु की अपेक्षा क्यों करनी चाहिए? आप बताइए क्या करनी चाहिए? आप बताइए क्या ऐसा करना प्राकृतिक सिद्धांत के अनुकूल होगा? इस पर विचार कीजिए। और दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।